फिर देखे कालू दू उलाना रब्बा का युबय्यिन लना माही। कहने लगे अच्छा फिर आप ऐसे करें, जाएं जाएं जाके अपने रब से पूछ के आए, वो हमें बताए कि वो फिर गाय। अब आप कह रहे हैं कि जिबा करो और रब का हुक्म है और आप मजाक भी नहीं कर रहे, तो जाएं फिर पूछ के आए वो कैसी होगी। अब पूछ के आए कैसी होगी, तुम्हें कहा है गाय जिबा करो, कैसी होगी का क्या मतलब है। काला मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया इन्ना हु यकूलू, बेशक वो फरमाता है इन्ना बकारतुन ला फारिदुन वला बिक्र, ऐसी गाय जिबा कर लो, कोई भी ऐसी गाय हो जो ना बहुत बूढ़ी हो ना बहुत जवान हो, बीच में, बीच यानी मिडिल एज की हो, बिल्कुल एनर्जेटिक, इतनी बूढ़ी भी ना हो कि भाई बहुत सारे बच्चे पैदा किए हुए तो वो बहुत बूढ़ी हो गई भी है, और ना ही बिल्कुल ऐसी बच्चिया हो कि बिल्कुल अभी बच्ची सी ही है। आवानुम बैना जालिक, दरमियानी उम्र की, इसके दोनों के दरमियान। फालू मा तू मारून, कर लो जो तुम हुक्म दिए गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये नहीं करेंगे और इस तरह की बातें करते रहेंगे तो ये इनके लिए मुश्किल होगा करना। आप ये देखें मूसा अलैहि सलाम को जब वो ये कह रहे हैं ना जाओ और जाके पूछ के आओ, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। वो असल में क्या कह रहे हैं, जाओ अब मूसा अलैहि सलाम जाएंगे तूर पे, अल्लाह ताला से बात करेंगे, हुक्म लेंगे, फिर वापस आएंगे। वो कितना अपने नबी को सता रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसी सूरह बकरा में आप पढ़ लीजिएगा आगे, अल्लाह ताला ने फरमाया अम तुरीदुना तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, तुम भी इस तरह चाहते हो, तुम भी अपने नबी से इसी तरह सवाल करो जैसे मूसा अलैहि सलाम से किए गए थे, तुम भी यही अपने नबी के साथ करना चाहते हो। अब उनको इस पे भी चैन नहीं आया, भाई आके मूसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया इन्ना हू यकूलू, देखें ये भी हो सकता था काला इन्ना बकरतुल्ला फारिदु वला बिकर, वो ऐसी गाय है नहीं, इन्ना हू यकूल, बेशक वो कहता है, वो फरमाता है, वो कौन, हू कौन, रब, तुमने कहा ना तो अपने रब से जाके पूछो, तुम रब फरमाता है कि वो ऐसी है, लेकिन उनको फिर भी तसल्ली नहीं हुई। आगे से क्या कह रहे हैं हालू दुलाना रब्बा का युबय्यिन लना मा लौनुहा, तुम दुआ करो अपने रब से वो हमें बताए कि उसका कलर क्या है। अब फिर मूसा अलैहि सलाम जा रहे हैं, तो कितना तंग कर रहे हैं अपने नबी को भी, और कैसे अल्लाह ताला के अहकामात में भी किस तरह से उनको, यानी जब मानना ना हो ना तो फिर इंसान ऐसे करता है, जाओ जाके पूछ के आओ कि वो कलर क्या होगा, उसका कलर हमें बताए। भाई जब तुम्हें कह दिया कि तुम कोई भी गाय कर लो तो कोई भी कर लेते ना तो उनके लिए पूरी हो जाती बात, लेकिन अब कलर पूछ रहे हैं। ये ऐसे ही आप समझे कि आप अपने बच्चे को कहती हैं बेटा पानी लेकर आओ, अब बेटा कहे अम्मी ठंडा या गर्म, आप कहें चलो ठंडा ले आओ, अम्मी शीशे के ग्लास में या पीतल के ग्लास में, अच्छा चलो बेटा शीशे में, नहीं ग्लास बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, अब आप क्या कहेंगी, आप क्या कहेंगी। अब वो बच्चा काम कर भी लेगा ना, और अगर आपसे इतने सवालात करे तो आपका क्या, यानी आपको कोई कदर रहेगी उसके काम करने की। और ये सवाल क्यों किए जाते हैं इस तरह, आप आगे से क्या कहती हैं, तुमने ला के ही नहीं देना, तुम रहने ही दो, समझ समझ जाते हैं ना हम के बच्चे का मूड नहीं काम करने का। यहां पे भी क्यों इस तरह सवाल हो रहे हैं, मूड नहीं है काम करने का, किसी तरह टाल ही जाइए काम। बाज दफा हम भी ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि वो सिर्फ किस लिए होता है, अच्छा ये बताइए वाजिब है कि मुस्तहब है, करना जरूरी है कि वैसे ही सुन्नत है कि क्या है, पता नहीं जो क्यों हमने करना जो नहीं होता। और बाज दफा ऐसे ऐसे सवाल करते हैं करना नहीं होता वो बिल्कुल, लेकिन बस सवाल बराए सवाल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हलाक हो गए बाल की खाल उतारने वाले, बाल की खाल यानी बस पीछे पड़ जाना उसी को, अभी जो हुक्म दिया जा रहा है आप कर लो, लेकिन उसको इतना बाल की खाल उतारना, इतनी बारीकियों के अंदर उसके जाना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा एक आपने फरमाया ना कि हज तुम्हारे पर फर्ज किया गया, तो एक आदमी ने पूछा क्या हर साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर उसने पूछा क्या हर साल, आपने कोई जवाब नहीं दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अगर जवाब दे देता कि हाँ तो हर साल फर्ज हो जाता, फरमाया तुमसे पहली उम्मतें हलाक इसलिए हुई हैं कि वो बहुत सवाल करती थी, सवाल ना किया करो। और सहाबा इतना डरते थे सवाल करने से, कहा जाता है 20 से भी कम सवाल सहाबा ने किए किसी आयत के बारे में, पूरे कुरान जितनी देर उतरा है ना 20 से भी कम सवाल। हाँ कोई होता था, कोई कोई वो इंतजार करते थे कोई बद्दू आ जाए और वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करे तो हम भी सुन ले, इसका इंतजार करते थे, खुद नहीं सवाल करते थे। اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے تھے تو آگے سے کیا فرماتے تھے صحابہ کرام؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے. تو زندگی میں ایک اصول بنا لینا چاہیے, بے وجہ سوال کیے چلے جانا یہ اچھی عادت نہیں ہے. دیکھیں بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ آیا, ان کے اتنے سوالوں کو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ایسے ہی بلا وجہ نہیں. یہ قرآن پاک ایسے ہی فالتو باتوں کو مینشن نہیں کرتا کبھی, لیکن کیوں بار بار ان کی ہر ہر سوال کو یہاں پہ لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا ان کا سوال کرنا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اب آگے سے یہ نہیں ہوتا, اچھا پھر ایسے کیسے, تو ایسے کیسے, تو کتنا ٹائٹ ہو کپڑا, کتنا لمبا ہو حجاب, کتنا چھوٹا ہو, وہ کرنا ہی کا موڈ ہی نہیں ہے تو پھر کیا. ابھی تک تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی اس چیز کی. یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. کر گزرو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمایا, اس کو مکمل کرو. تو جو سوالات ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دیں, یعنی جن باتوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے نا ان کو چھوڑ دیں. تو ویسے بھی دین کے علاوہ بھی بے جا سوالات کرتے رہنا لوگوں سے, یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے, کوئی پسندیدہ عادت نہیں. آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں, بھائی اچھا آپ کے بچے کہاں ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ کیسی ان کی گزر رہی ہے, اچھا تمہارا ہسبینڈ تمہارے ساتھ اچھا ہے کہ نہیں ہے, تمہیں کیا دیا, تمہاری عید پہ تمہیں کیا تحفہ دیا تمہارے ہسبینڈ نے فلانے کے ساتھ, یعنی تمہاری تنخواہ کتنی ہے, تمہاری ایج کیا ہے, یعنی ایسے ایسے سوالات کہ جو دوسرے کو اریٹیٹ کر دیں, یا دوسرا نہیں جواب دینا چاہتا, یا دوسرے کو پسند نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ڈسکلوز کرے, اس کی کوئی پرائیویسی ہے, وہ نہیں پسند کرتا, لیکن ہم کریدتے ہیں ان لوگوں کی پرسنل باتوں کو, اتنا کریدتے ہیں, اتنا ان سے پوچھتے ہیں کہ دوسرے کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی حسن ہے یہ, اس کی بیوٹی ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑے. بھئی آپ کا اگر تعلق نہیں ہے ان کا کوئی کیسے بھی وہ کو دوسرا کوئی خود بتا دے تو بہت اچھی بات, نہیں بتاتا تو کیا ضرورت ہے. اور ایک دفعہ سوال کرنے سے سمجھ آ جاتی کہ دوسرے کو نہیں, وہ کمفرٹیبل نہیں ہو رہا. جب وہ مختصر سا جواب دے دے آپ خاموش ہو جائیں, کہاں گئے, کہاں سے آئے, کیا کیا, کدھر گئے, تمہارے گھر کون آیا, تم کدھر ویکینڈ پہ گئے, یعنی ہمیں کیا لگے اس سے. لیکن اصل میں ہمارے پاس کوئی بات میرے خیال کرنے کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے, تو ہم لوگوں کو سوالات کر کر کے ان کو تنگ رکھتے. تو کوئی اور ٹاپک نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ اللہ رسول کی کوئی بات کریں, کوئی اچھی بات کریں جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے وہ بات کریں, کوئی نیکی بھلائی کی بات کر لیں, یا بس سوالات پہلے ان سے لے لینا انفارمیشن, پھر اس کو ڈسکس کرتے رہنا. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, ٹائم کیسے ہوگا, ہم لا یعنی باتوں میں لگے رہے. سب کی خبر رکھنا ہمارا کوئی فریضہ ہے؟ تو نہیں سوال کرنے چاہیے, اور دین کے معاملے میں تو بے جا سوالات کرنے سے رک جانا چاہیے. جو آپ کو پتا چلتا ہے, ہاں آپ یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ کام کیا جائے. آپ کو مثلا نماز ہے, اب آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے سکھائیں نماز کیسے کرنی ہے, ایسے کرنا ہے یا اس میں نہیں ہے ایسے کر, وہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ کو پتا نہیں. لیکن کسی حکم کے بارے میں جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ اب مجھے کرنا نہ پڑے, اس کے سوالات پوچھتے جانا. تو انہوں نے بھی کیا, اب رنگ پوچھ رہے ہیں. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تو ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے بھی پھر انہوں نے ایک تماشا بنا لیا تھا نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اب کیا حکم آیا, یلو کلر کی. اب یلو کلر کی کتنی ریئر ہے, یعنی ایسا گولڈن سا کلر ہو جو کہ خوبصورت بھی لگے دیکھنے میں, جو دیکھے تو کہے کہ واہ کتنی خوبصورت گائے, ایسی ہو پھر اب مشکل ہو گئی نا, کیونکہ ایسی گائے تو ڈھونڈنی مشکل ہے. دیکھیں ان کے ایک نا دل میں بھی چور تھا نا, کہ ان کو گائے کی بڑی احترام عزت تھی ان کے دل کے اندر. جیسے گائے کی تو انہوں نے پوجا بھی کی تھی, ایجل کی تو تھی, بچھڑے کی تو پوجا کی تھی نا. اب کرنا تو نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ذبح کرنا, اب کیسے کرتے, اس وجہ سے سوالات بھی اتنے تھے. جب کام نہ کرنا ہو تو پھر سوال بھی بہت آتے ہیں نا, جب کام کرنا ہو تو جس کو کام کہیں گے وہ فوراً اٹھ کے کر لے گا. صحابہ کرام کتنے حریص ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے، کیسے حریص تھے سبحان اللہ، کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم دیا تو جس کے ہاتھ میں بھی گلاس تھے انہوں نے وہیں رکھ دی، جس کے منہ میں بھی تھی، جس نے منہ کے ساتھ لگا دیا تھا اس نے وہیں چھوڑ دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے وہیں سے نکال دی. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلو ہم پہلے جا کے پوچھیں تو صحیح، شراب کون سی والی حرام ہے، یہ والی حرام ہے یا ہو سکتا ہے یہ والی نہ ہو حرام، ابھی تو پی لیتے ہیں بعد میں پوچھ لیں گے، جب ابھی ہمیں تھوڑی سمجھ آئی کون سی والی حرام کی ہے، اور پتہ نہیں ایسی والی حرام ہے، پرانی حرام ہے کہ نئی والی حرام ہے، انگور کی حرام ہے یا کھجور کی حرام ہے، یہ تو نہیں ہمیں پتا. انہوں نے ایک لفظ بھی آگے سے نہیں بولا. عورتوں کو جب پردے کا حکم آیا تھا راتوں رات انہوں نے چادریں سی تھی اور اگلے دن فجر کے لیے چادریں پہن کے گئی تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا کہ آج کیا بات ہے کہ مدینہ میں گھر گھر میں چراغ جل رہے ہیں. وہ تو چراغ نہیں جلاتے تھے، اندھیرے ہوتے تھے ظاہر ہے، اتنا تو نہیں کسی کے پاس تھا، تو کیا پتا چلا کہ پردے کے احکامات اترے ہیں تو راتوں رات چادریں سی رہی ہیں کہ صبح فجر پہ جانا. انہوں نے تو یہ نہیں سوچا پہلے جا کے صبح کل پوچھیں گے چادر لمبی ہو کہ چھوٹی ہو کہ کیسی ہو اور کیسی نہ ہو، اور کس وقت لینی ہے اور کس وقت نہیں لینی ہے، اور کتنی لینی ہے اور کتنی نہیں لینی ہے، اور کس عمر کی عورت کو لینی ہوگی اور میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں میں نے تو نہیں لینی ہے، اور میں تو اس ایج کو پہنچ گئی تو. انہوں نے تو نہیں یہ پوچھا، بس انہوں نے سی، کیونکہ جب کرنا ہوتا ہے نا کام تو پھر ایسے ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کچھ کچھ بیان کر رہے تھے صحابہ کو، تو آپ نے کسی سے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی تھے ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ہاں انہوں نے ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی نا بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. کسی نے ان سے بعد میں پوچھا آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ تو کسی اور کو فرمایا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں مجھے تھوڑی کہا ہوگا میں تو جاتا ہوں. اتنا ادب تھا، اتنے حکم کو ماننے کے لیے وہ حریص تھے. آپ کو پتا ہے قبلے کی جب تبدیلی ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا اب نماز تو ختم کر لیں، پھر اس کے بعد جو جب ان کو ایک صحابی تھے جنہوں نے آ کے یہ اطلاع دی، لوگ نماز میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں تھے وہ نماز میں، وہ تو یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بتایا، انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم بعد میں پہلے نماز ختم کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ملیں گے پھر ہم پوچھیں گے کیا وجہ ہے، بھائی کوئی وجہ تو پتا چلے کیوں ایسے. اچھا کل سے پھر اگلی نماز میں کر لیں گے، ابھی بھی کیا اتنی جلدی ہے نماز میں ہم کیوں موومنٹ کریں. انہوں نے اسی وقت اپنی ڈائریکشن بدل دی، سبحان اللہ. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے ان کی بھی اطاعت دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی مڑ گئے، اور جن کو آگے اطلاع ملی انہوں نے بھی ایسے ہی کر. کیا بات ہے کہ ہمیں اتنے سوال آتے ہیں اور وہ بھی اس وقت آتے ہیں جب کوئی دین کی بات ہے. آپ کیوں نہیں جاتی کسی ڈاکٹر کے پاس اور آپ کہتی ہیں پہلے مجھے اس کی دوائی کے بتاؤ، پہلے مجھے اس کا یہ بتاؤ یہ کب سے ہوئی ہے، کب اس کو بنایا گیا، پھر یہ کس نے اس کو کہا کہ یہ اس چیز کا علاج ہے، کتنے لوگوں کو اس سے آرام آیا ہے، اس کی کیا سٹڈی ہے، اس کی کیا ایفیکٹ ہیں، آپ نے یہ کب پڑھی، یہ کچھ بھی نہیں پوچھتے، بس فٹافٹ لے کے بس آ کے بلائنڈلی اس کو کھانے لگتے ہیں ڈاکٹر نے دے دیا. لیکن سارے کوسچن ہمیں دین کے معاملے میں آتے ہیں کیونکہ ہمیں کرنا نہیں ہے. لیکن جب یہ یقین ہو نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کون ہے، میرا خدا اس نے یہ حکم دیا، پھر کوئی کوسچن نہیں آئے گا. جیسے ہم فزیکل لاز کو مانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہی وہ فزیکل لاز بھی بنائے ہیں، اللہ نے ہی شریعت کے لاز بھی بنائے ہیں. سمجھ آئی بات، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ فزیکل لاز اللہ نے بنائے ان کو ہم سب کو مانتے ہیں، شریعت کے لاز کو نہیں مانتے. فزیکل لاز کیسے مانتے؟ ہمیں پتہ ہے آگ جلاتی ہے، ہم کبھی بھی نہیں اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں گے. کیوں نہیں ڈال دیتے؟ ہو سکتا نہ جلائے آج، نہیں. لیکن ہم مانتے ہیں اس کو، مگر شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یتیم کا مال کھانے والا اس کے پیٹ میں انگارے ہوں گے، ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں کھا لیتے آج، وہ دیکھی جائے گی اس وقت، کوئی بات نہیں توبہ کر لیں گے. ہم کیوں نہیں چھت سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور ہم کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں نیچے نہ گروں، میں ہوا پہ ہی چلنے لگ جاؤں، کیوں نہیں کرتے یہ؟ क्योंकि आपको यकीन है कि ये लॉ है और ये ऐसे ही होगा। पानी में डुबकी लगाऊंगी, पानी में छलांग लगाऊंगी तो डूब जाऊंगी, ये पता है हमें। जिसने ये फिजिकल लॉज बनाए हैं ना, उसी ने ही शरीयत के लॉज भी बनाए हैं। जैसे ये मानने जरूरी आप समझते हैं, उसी तरह वो मानने जरूरी है। जैसे ये नहीं बदल सकते, उस तरह वो भी नहीं बदलते। ये रियल है तो वो भी रियल है, मगर चूंकि उनके कॉन्सिक्वेंस एकदम नजर नहीं आते, तो इसलिए हम करते जाते। तो कालुद औलाना रब्बा का युबय लना माही। अब फिर वही क्वेश्चन। अब देखें जो पहला क्वेश्चन था, फिर दोबारा वही क्वेश्चन, हमें बताएं तो सही वो कैसी। इन अलबरकरा तशाबह अलैना, गायें तो इतनी सारी हैं, हम तो कंफ्यूज ही हो गए हैं। जितनी आपने बातें बताई उनसे तो हम कंफ्यूज ही हो गए। बहुत सारी गायें हैं जो दरमियानी एज की भी हैं, जो येलो भी होंगी, जो खूबसूरत भी लगती हैं देखने में। और फिर एक बात उन्होंने कही, वह इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून। अब इस दफा अगर अल्लाह ने चाहा ना, तो हम जरूर गाय को पा ही लेंगे, हमें रहनुमाई हासिल हो ही जाएगी, हम हिदायत पा ही लेंगे। और हदीस में आता है, अगर बनी इसराइल इंशाल्लाह ना कहते तो कयामत तक उनको ऐसी गाय नहीं मिलती। मुझे अब उन्होंने इंशाल्लाह जो कह दिया तो उनको मिल गई, और ये काम वो कर पाए सिर्फ इंशाल्लाह कहने की वजह से। तो इंशाल्लाह कोई मजाक चीज नहीं है। बाज लोग हमारे अपने मुसलमानों में, अस्तगफिरुल्लाह, किसी के साथ ये वाकया हुआ कि यानी उन्होंने इंशाअल्लाह कहा, तो आगे से सुनने वाले ने कहा, इसका मतलब आपने ये काम करना ही नहीं है जब भी आप कह रही हैं इंशाअल्लाह। यानी हमने देखे कितना लाइट लिया है ना इंशाअल्लाह को। और यहां से ये पता चलता है कि उनको भी इंशाअल्लाह का पता था। अल्लाह ताला की, मैंने आपको बताया ना, जो पहचान है, जो दीन है, जो इल्म था, वो उनके पास था। इंशाअल्लाह भी पता था, ऐसे नहीं था कि अल्लाह को नहीं मानते। मगर यही तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई काफिर नहीं है, ये एक बिगड़ी हुई उम्मत मुस्लिमा है जिसका नक्शा हमें दिखाया जा रहा है, बिगड़ी हुई उम्मत मुस्लिमा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम हिदायत पा लेंगे। और हर एक को चाहिए कि जब भी किसी भी काम का इरादा करें तो इंशाअल्लाह जरूर कहें। इंशाअल्लाह कहने से वो काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा, मगर कभी दुआ के लिए इंशाअल्लाह ना कहें, ये मना किया गया हदीस में। दुआ में इंशाअल्लाह नहीं कहना। मैं आपको कहूं अल्लाह आपको सेहत दे, और आप आगे से क्या कहें, इंशाअल्लाह, ये नहीं कहना। समझ आई बात? और या मैं दुआ मांगते हुए कहूं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक करें, ये नहीं कहना। अगर अल्लाह ने चाहा, ये कहें अल्लाह आपकी औलाद को नेक करे, और आपने आगे से क्या कहना है, आमीन। ठीक है, आमीन कहना है, इंशाअल्लाह नहीं कहना। क्योंकि हदीस में इससे मना किया गया कि जब अल्लाह से मांगो तो ये ना कहो अगर अल्लाह चाहे तो दे दे। इंशाल्लाह का मतलब क्या है, अगर अल्लाह ने चाहा तो। क्या कहो, आमीन कहो, तो हम आगे से इंशाल्लाह कहते रहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं अल्लाह आपको इंशाल्लाह सेहत दे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी औलाद को नेक करेगा, लेकिन जब दुआ देने लगो या दुआ करो तो उस वक्त इंशाल्लाह कह के ना करो, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है जो मर्जी करे। आप ये नहीं कह सकते अगर वो चाहे तो, वो तो जो चाहेगा वैसा ही होगा। قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث। कहा बेशक वो फरमाता है कि वो ऐसी गाय है। अब देखें, फिर उनको भेज दिया कि जाओ पूछ के आओ। इनको अभी भी नहीं तसल्ली हुई कि, और अब वो आके फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी इस बात पे कि वो ऐसी गाय है जो ना मुती हो, यानी खिदमत ना उसे ली गई हो, मुती ना हो वो, यानी क्या जुल है ना, जलील की गई, यानी बहुत उसे मुशक्कत के काम लिए गए, बड़ा काम कराया गया, काम कर करके वो तो जाहिर है उसके अंदर वो तो एनर्जी नहीं रहेगी ना, और ना ही वो फाड़ती हो जमीन को, यानी हल भी ना चलाती हो कि कहीं हल जोतने में काम आ रही है। वला तस्किल हर्स, और ना ही कहीं पानी देती है खेती को। आपको पता है ना, वो उसके ऊपर भी तो पानी का, आपने देखी होंगी गाय वगैरह बैल वगैरह के ऊपर डंडा सा लगा के दोनों तरफ बाल्टियां लगा देते हैं, फिर वो उससे पानी देती है खेत को, या पानी निकालने के भी काम आती है। तो वो भी ना किया हो, यानी कोई काम भी ना किया हो उसने। अब सोचे ना, अब कैसी ये गाय हो जिसने कभी काम भी ना किया। और मुसल्लमतुल्लाशिया, ऐसी सेहतमंद भी है, सही सलामत है, कोई यानी उसमें ऐब नहीं है, कहीं से टांग नहीं टूटी हुई, कहीं से कान नहीं कटा हुआ, और नहीं उसमें कोई निशान भी नहीं है, बिल्कुल सही उसका कलर है, कोई धब्बे नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब कितनी रिस्ट्रिक्टेड हो गई इनके लिए ये गाय ढूंढना, कि आप देखें कोई जवान भी हो, यानी अच्छी हट्टी कट्टी भी गाय है, खूबसूरत भी है, तो किसी ने उसको खड़ा तो नहीं किया होगा ना, उसे कोई काम ही लेते होंगे, कराते हुए काम, कोई गाय को ऐसे ही तो नहीं रख लेता। लेकिन उसने काम भी ना कोई किया हो, वो बिल्कुल ठीक ठाक भी हो, ये कितना मुश्किल हो गया ढूंढना। कहालुल आना जिकता बिलहक, उन्होंने कहा अब लाए हो ना तुम सही बात, यानी उस वक्त तक जो बातें थी वो ठीक नहीं थी, उस वक्त तक जो रसूल तुम्हें बता रहे थे उससे नहीं तुम्हारी तसल्ली हुई थी। अब उन्होंने गाय तलाश जब करनी शुरू की, तो गाय मिलनी ने कितनी मुश्किल थी ऐसी गाय मिलनी, एक जगह पे जाके मिली, एक लड़के के पास थी वो गाय, और उसने कहा मैंने तो नहीं बेचनी, क्योंकि उसका बाप फौत हो चुका था, ये यतीम लड़का था, ये माँ बाप का बहुत फर्मा बरदार था, बहुत नेक बच्चा था, इसका बाप एक गाय छोड़ गया था। बहुत सारी इसके अंदर रिवायात आती हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की हैं, लेकिन जो जिस्ट है उनकी ये है, ये वो एनी हाउ उन्होंने गाय को जंगल में छोड़ दिया था, चलती चरती रहती या मतलब अपनी ग्रेज करती खुद ही, और फिर वो माँ ने एक दिन बेटे को कहा कि ले आओ तुम गाय को, वो लेकर आ गया, गाय बड़ी खूबसूरत भी थी। इन्होंने जब गाय देखी तो इन्होंने कहा कि हमने खरीदनी है, उसने कहा मेरे बाप की निशानी, मैं तो नहीं बेच सकता, मैंने मुझे बेचनी ही नहीं है ये गाय, एक ही गाय है मेरे पास। उन्होंने कहा कि भाई तुम किसी तरह करके भी बेचो, उसने कहा मैं नहीं बेचता। ये गए मूसा अलैहि सलाम के पास, उन्होंने कहा भाई तुम जो मर्जी करो, लेकिन अब तो गाय तो वही लानी पड़ेगी, क्योंकि और तो कोई गाय नहीं। यानी हाँ, उस लड़के ने कहा ठीक है मैं बेचूंगा, लेकिन इतनी कीमत होगी कि इसको तोलो सोने के बराबर, तब मैं बेच सकता हूं। कितना मुश्किल हो गया, कहां वो थोड़ी सी कीमत पे जाके कोई भी गाय लेकर आ जाती और कर लेते, और कहां ये अब सोने में तोलनी पड़ेगी वो गाय, यानी एक तरफ गाय तोल ले तो दूसरी तरफ सोना रखें, फिर इतनी कीमत मैं लूंगा, अंदाजा करें कितनी महंगी हो गई वो गाय। एक तो गाय को जिबा करना ही इनके लिए मुश्किल, उसकी ताजीम इतनी थी, ऊपर से अब इतनी बड़ी कीमत भी दें। लेकिन अब इंशाल्लाह कह चुके थे तो फजाबा हुआ, तो जिबा कर दिया उसको, लेकिन वह माँ का अदू ये फालून, लगते नहीं थे वो करने वाले, करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, वो कोई शौक से नहीं कर रहे थे, वो बहुत उनको भाग भाग के नहीं उन्होंने किया, बड़ी मुश्किलों से किया, बहुत ज्यादा यानी अपनी तरफ से सर से उतारना ही चाहते थे। यानी इससे पता चलता है कि जब हम सर से उतारने वाले काम करते हैं ना, कभी कभी हम कर लेते हैं, अल्लाह के हुक्मों को मान भी लेते हैं, लेकिन बस हाय हाय करके ही बस किसी तरह, वो भी अल्लाह को पता है कि इसने किस तरह से किया है, क्या शौक में भाग भाग के मेरे लिए काम किया है, मोहब्बत के साथ किया है, अल्लाह का हुक्म है मैंने करना है, यहां बस मारे भांते का हाय हाय अब करना पड़ ही रहा है, उठना पड़ ही गया, इस तरह का किया। वमा कादू यफअलून, अब ये वो स्टेटस तो नहीं रहा ना जो कि अगर शुरू में ही हुक्म दिया जाता तो भाग के करते, अल्लाह का हुक्म आया, जब नबी ने बताया कि अल्लाह ने हुक्म दिया तुम्हें कि जिबा को करो बकरा, तो उसी वक्त कर लेते, तो वो स्टेटस एक अलग था, वो अल्लाह के हाँ मकाम एक अलग था, अब कर लिया, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वा मा कादू यफालून, करते लगते नहीं थे वो, करने वाले नहीं बन रहे थे वो, उन्होंने जल्दी नहीं की कोई करने में, बेदिल होके करा, बची जाए किसी तरह करने से, तो कहते ना इंसान अपने आप को बचाता ही है, मगर फिर करना ही पड़ जाता तो चलो कर ही लेते हैं। अब आपने दिल नहीं चाह रहा आपका जेब से पैसे निकालने का, अब दूसरा इतना आपको जोर दे रहा है, या वो फंड रेजिंग में इतना कह रहे हैं, तो अब आप मुश्किलों से ही पर्स से निकालते हैं और देते हैं, आए अब क्या है ये खत्म हो, वो भी अल्लाह को पता होता है, पता है कि किस तरह से किसी ने काम किया, फिर अजर भी तो उसके मुताबिक ही है ना। एक वो जो भाग के करता है उसका शौक भी अल्लाह देखता है, और एक बददिली से करता है उसका भी अल्लाह देखता है। और अक्सर काम ऐसे होते हैं नेकी के खास तौर पे जो हम बहुत शौक से नहीं कर रहे होते, बस कभी किसी ने कह ही दिया तो अब कर लिया, या मजबूरी है तो अब करना ही पड़ गया, या अब क्या करें, फिर लोग भी कहेंगे कि कोई काम में आगे नहीं बढ़ती तो कर लिया, है ना। तो अब आ रही है बात, अब वो रीजन आ रहा है कि क्यों ये कत्ल किया, ये कतर यानी ये गाय जिबा करने का क्यों हुक्म आया। अब क्यों आया ये एंड में, अभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। नंबर वन इसका रीजन ये है कि इसका मतलब अल्लाह ताला के हाँ वो कत्ल होना इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितनी बड़ी बात ये है कि तुम अल्लाह के अहकामात को इस तरह से मजाक बना लेते हो, और नबी की तुम्हारे यहां कोई इज्जत नहीं है, कोई उनका अदब नहीं है, ये ज्यादा बड़ी बात है। इतनी लंबी देखे आयतें आई हैं और उसके बाद कत्ल की बात आई है, यानी कत्ल सेकेंडरी बात है, नबी का एहतराम पहले है, अल्लाह के हुक्मों की ताजीम पहले है, अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना ज्यादा बड़ी बात है, वो और तुमने जो किया है वो ज्यादा बड़ा क्राइम है, वो ज्यादा बड़ा जुर्म है, कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। नबी की को यानी ड्यू रिस्पेक्ट ना देना, उनको तंग करना, अल्लाह के अहकामात को इस तरह सवाल पे सवाल और सवाल पे बहसें कर करके अल्लाह के अहकामात को बिलिटल करना, हकीर करना, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, इसलिए ये पहले आई, समझ आई बाप। और किस वजह से पहले आ सकती हैं, सोचें आप क्यों ये पहले आए, क्योंकि पहले रीजन नहीं बताया गया, इसलिए कि बकरा को कत्ल करो, जिबा करो बकरा को, ये पहले आया और बाद में रीजन बताया। इसका मतलब रीजन जानना, इसको प्रायोरिटी ना बनाओ कि क्या वजह है, क्यों है, क्या है, नहीं, जो हुक्म आया उसको कर गुजरो, तुम्हें समझ आए या ना आए, और अब बताया जा रहा है, वजह अब बताई जा रही है, समझाई बात। ये ऐसे ही फालतू नहीं है ये आयात, में बड़ी हिकमत है। वह इस कत्ल तुम नफसन, और जब कत्ल किया तुमने एक जान को, फद्दा रहा तुम फीहा, तुम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम दे रहे थे, तुमने किया, वो कह रहा तुमने किया, उधर तो आग लग गई, वो तो यहाँ पे जंग शुरू होने लगी थी। वल्लाहु मुखरिजु मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला है जो थे तुम छुपाते। ये एक जनरल बात कर दी गई, ये नहीं कहा गया कि अल्लाह ताला ये कातिल को निकालेगा, अल्लाह निकालने वाला है जो भी तुम छुपाते हो, जो भी तुम छुपाते रहे हो अल्लाह उसको निकालने वाला है। क्या मतलब, नंबर वन कातिल को छुपाते थे, कातिल छुपा हुआ था, अल्लाह उसको निकाल बाहर करेगा, और अल्लाह ने उसको एक्सपोज कर दिया। लेकिन इससे एक और बात पता चल गई कि ये अल्लाह का रूल है, वो निकाल बाहर लाता है जो भी तुम छुपाते हो। नियतों के अंदर कोई फतूर है ना, ऊपर से अगर कहते हो ईमान वाले, और अल्लाह ताला ने फरमाया वा मिन अन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन, लोगों में से बड़े हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पे और रसूल पे, लेकिन अल्लाह पर और यौम आखरत पर, लेकिन वो ईमान वाले नहीं है। वो भी अल्लाह ने निकालना होता है अंदर से, वो मुनाफिकत के अंदर तो मुनाफिकत है, ईमान तो अंदर है ही नहीं, जो मुंह से बातें करते हैं वो और हैं, और जो अंदर छुपी हुई है वो और है। शैतान भी तो छुपा हुआ था ना फरिश्तों में, उसका तो किसी को नहीं पता था कि ये इबलीस है, ये शैतान है, वो तो छुपा हुआ था, अल्लाह निकाल के लाया ना उसको, क्योंकि अल्लाह को पता था कि दिलों के अंदर क्या है, वो जो तकब्बुर था, वो जो अपनी बड़ाई थी, जो अपनी अना थी, वो अल्लाह को पता था, इसलिए सबको बता दिया गया। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम, जो थे तुम छुपाते अल्लाह उसको निकालने वाला है। इसी से सब लोगों को ये नसीहत हो जानी चाहिए कि जो भी हमने दिलों में छुपाया हुआ है वो भी अल्लाह एक दिन निकाल देगा। वो नियतों के कोई ऐसी कोई चोर है अंदर, वो नियतों के अंदर कोई खराबियां हैं, वो दिलों के अंदर कोई गंध भरा हुआ है जो किसी को दिखाते नहीं है, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, अंदर में कुछ और लगे हुए हैं, वो सब अल्लाह निकाल लाएगा। अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमारा जाहिर और बातिन एक कर दे, अल्लाह हमारे जाहिर और बातिन से हमें पाक कर दे। अल्लाह अकबर। फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा, बस कहा हमने मारो इसको इसके बाज के साथ। क्या मतलब मारो इसको किसको? यानी फिर हुक्म हुआ कि जो ये मकतूल है ना, इसकी लाश को मारो इस गाय के पीस के साथ, गाय के बाज हिस्से के, बादिहा बाज इसका, किसका? गाय का। और नदरी भू, हु में हु की जमीर किस तरफ है? मकतूल की। मारो उसको, मकतूल को, यानी गाय के बाज हिस्से के साथ मारो। तो जब उसको उसके साथ टच किया गया तो वो जिंदा हो गया, और उसने कहा ये मेरे भतीजे ने मुझे कत्ल किया था, और ये बता के वो दोबारा मर गया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी अपनी निशानी दिखाई। कदालिक युही अल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक्लून। ऐसा नॉर्म नहीं होता कि अल्लाह मरने के बाद किसी को जिंदा करे, लेकिन इनके आगे निशानी दिखाई ये कि वो जिंदा हुआ, वो बोला और फिर वो मर गया। क्यों ये निशानी दिखाई? क्यों गाय को जिबा करने का कहा गया? क्यों ये सब कुछ हुआ? ये अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए भी तो बता सकते थे कि फलां है जिसने कत्ल किया। ये भी तो हो सकता था। या अल्लाह ताला गाय को ना कहते और सिर्फ ऐसे ही आदमी जिंदा होके बता के मर जाता। इसके अंदर पीछे मसलियतें थी। नंबर वन ये कि अल्लाह ताला उनके दिल से गाय की मोहब्बत को जायल करना चाहता था, जिसको वो इतना एहतराम देते हैं उसको अपने हाथ से जिबा करवा था। जिबा करो ताकि तुम्हारी इसके साथ जो ताजीम है और ये खत्म हो कि हम हाथों से अपने इसको मार रहे हैं। एक ये बात हुई, और दूसरा इन लोगों के अंदर कयामत के दिन जी उठने का जो अकीदा था वो कमजोर था। अल्लाह ताला उनको दिखाता है कि देखो जैसे अल्लाह ने इस मुर्दा को जिंदा किया ना, अल्लाह ताला इसी तरह कयामत में जिंदा करेगा। और सूरह जो बकरा है ना, इसके अंदर 5 दफा आएगा मौत के बाद जिंदा होने का जिक्र। 5 वाकयात आएंगे इसके अंदर। एक वाक्य आप पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा है वो वाक्य जिसमें अल्लाह ने मुर्दा को जिंदा होने का दिखाया? कुछ याद है आप लोगों को? जो वो 70 बुजुर्गों को मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे और वो मर गए फिर अपने सवाल की वजह से। तुम बाथना को मिम्बादी मौती को, अल्लाह तला ने फरमाया ना मैंने तुम्हें जिंदगी दी मौत के बाद, यहां पे भी अल्लाह तला ने इसको जिंदा किया। फिर आगे 3 और वाकयात आएंगे जिंदा करने के, जो कि नॉर्म नहीं है, अल्लाह का तरीका नहीं है, लेकिन इनको अल्लाह ने मोजे दिखाए। ये सुबहान अल्लाह, इनके आगे मोजे ही रखे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा मुर्दा जिंदा हुआ, तो अल्लाह इसको जिंदा कर सकता है तो सारी इंसानियत को जिंदा कर सकता है। तो हम कहें हमें तो नहीं कुछ, हमने तो नहीं किसी को जिंदा होते देखा। आप सोचें कि उनका तो अब इस किस्म के मौजों की हमें जरूरत नहीं। उनका तो एक ऐसा दौर था जिसमें उतनी समझ थी। आज अल्लाह ने हमें वो चीजें दिखा दी है ना कि अल्लाह को पहचानना और मौत के बाद जिंदगी देखना कोई मुश्किल नहीं रह गया। आप एक अंडे को ही देख ले, अंडा आप फ्राई करते हैं तो खा लेते हैं, उसी अंडे से चूजा निकल आता है। वो क्या है अंडा? आपने तो खोल के भी देख लिया इसमें क्या है, उससे एक लाइफ निकल रही है। अब पता है साइंसदान कहते हैं ये पेंसिल है ना, पेंसिल आप इसको उल्टा खड़ा कर दें, उल्टा खड़ा करते हैं, और उन्होंने कहा कि 1 अरब साल तक ये पेंसिल ऐसे खड़ी रहे बगैर सहारे के, बगैर सहारे के वो अपनी नोक पे सीधी खड़ी रहे। इससे भी ज्यादा, कितना बारीक है ना ये बात, इससे भी ज्यादा बारीक है पूरी कायनात का सिस्टम जो चल रहा है, इतनी बारीक उस पे चल रहा है। आप क्या सोचते हैं ये पेंसिल ऐसे खड़ी रह सकती है? नहीं रह सकती ना। कायनात को इसका मतलब कोई चलाने वाला है ना, कोई है जो इसका इंतजाम कर रहा है, इससे भी ज्यादा, यानी पॉइंट 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 0.00001% पे भी जाके कोई चीज में फर्क आ जाए तो कायनात धर्म बरहम हो जाए। हम देखते हैं ग्रेविटी क्या है, हम देख रहे हैं सियारे सितारे सूरज, इनकी चीजों को अब हम जान पाए हैं, हमारे सामने ये चीजें हो रही हैं, अब साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे सामने आए, और हमें क्या और देखना। अब उस वक्त का इल्म इतना नहीं था तो उनको इसी तरह दिखाया गया, और ये वह यूरीकुम आयाति ही, और वो दिखाता है तुमको अपनी निशानियां इस तरह, लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम अकल से काम लो, तो अपनी अकल इस्तेमाल करो कि इस तरह ही अल्लाह जिंदा करेगा, इस तरह ही अल्लाह के आगे खड़े होना एक दिन। ईमान बिल गैब, अल्लाह ताला के पास ये पावर है, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, उस दिन की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन है, और इस कंक्लूजन के अंदर बताया गया कि देखें मसला कहाँ पे होता है। मसला ये नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन क्यों किए या उन्होंने तावीलें क्यों निकाल लिया, प्रॉब्लम ना कहीं और है, प्रॉब्लम ना सीने के अंदर है, दिल में। ये दिल करप्ट जब हो जाता है ना, ये दिल जब सख्त हो जाता है तो वहां प्रॉब्लम आती है, फिर ये सारे ही काम होते हैं, फिर सवाल भी बहुत होते हैं, फिर तावीलें भी होती हैं जब दिल सख्त होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फाहिया कल हिजारती औ अशद कसवा। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है, क्या फरमाया, फिर दिल सख्त हो गए तुम्हारे, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, किसके बाद, इस वाकये को देखने के बाद, इतने बड़े मोजे को देखने के बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, होना क्या चाहिए था, ये वाकया देखने के बाद, समय ना वाता ना होता, अल्लाह तूने हमें ये इतना बड़ा ये वाकया ये चीज दिखा दी, उसके बाद और दिल सख्त हो गए, बजाय मानने के और ज्यादा हठधर्म हो गए, बल्कि इनके दिल कैसे हो गए, कल हिजारा, हिजारा की तरह, पत्थरों की तरह, औ अशद कसवा, या पत्थरों से भी ज्यादा सख्ती में। औ का माना बाज़ उलमा कहते हैं यहाँ पे बल के मानों में, यानी बल्कि बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए, या दूसरा माना हो सकता है कल हिजारा, या फिर बाज के हिजारा से भी ज्यादा सख्त, क्योंकि हिजारा भी जो है ना, पत्थर भी जो है, पत्थरों की मिसाल यहाँ पे असल में दिलों के साथ दी गई, सुम्मा कसत कुलूबों को इबादत फाहिया कल हिजारा, जैसे हिजारा होते हैं, जैसे पत्थर होते हैं, ऐसे इनके दिल सख्त हो गए, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा शदीद, क्योंकि पत्थर भी कैसे होते हैं, पहले आयत को समझ लें, क्योंकि पत्थर भी कुछ कैसे होते हैं, वह इन्ना मीनल ही जारत, मीनल यानी पत्थरों में से भी कोई बाज पत्थर ऐसे होते हैं, सारे नहीं, बाज पत्थर ऐसे होते हैं, लमा या तफज्जरु मिनहुल अनहार, कि उनमें भी ऐसे हैं कि फूट पड़ती हैं इससे नहरें। आपने कोई देखे हैं ऐसे पत्थर, आप देखते हैं बाज दफा नहरें आ रही होती हैं, वो कहते हैं पानी का पता ही नहीं चलता कहाँ से, पहाड़ों में से आ रहा है और किधर से चल रहा है, तो साता ही जा रहा है, नहरें चल रही होती हैं उससे। वह इन्ना मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, इनमें से कोई ऐसे भी पत्थर होते हैं जिन जो फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है, बाज दफा आप देखते हैं, मैं तो मैंने देखा भी हुआ ऐसे, यानी रॉक्स हैं और अंदर से पानी निकल रहा है, सुभान अल्लाह, तो समझ ही नहीं आती कि इसके अंदर से किधर से आ रहा है पानी, और आप हैरान होते हैं जैसे चश्मा टाइप ऐसे बह रहा है, नहरों की तरह तो नहीं है लेकिन इसमें से भी पानी निकलता है। वह इन नमिन हालमा यह भी तुम इन खशियत ला, और इन पत्थरों में भी ऐसे बाज हैं, यानी तुमसे तो पत्थर ही अच्छे हैं कि उनमें भी बाज ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह ताला के डर से, उसके खौफ से, यानी आप देखें मिन हा इनमें से, सब नहीं इनमें से, यानी लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है ना, आपने कहीं कहीं देखे, मैंने तो साइन बोर्ड्स भी देखे हमारे तो यहाँ पे बाज जगह पे लगे होते हैं फॉलिंग रॉक्स, तो उससे वो अवेयर कर रहे होते हैं कि यहाँ से ऊपर से पहाड़ से गिर सकती है कोई रॉक, तो उनकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कुरान में एक वजह उसकी ये बताइए कि अल्लाह के खौफ से गिरते हैं, अल्लाह का डर इनके अंदर इतना होता है कि वो गिर पड़ते हैं, कि अल्लाह ताला ने बताया कि देखो हम ना जब सख्ती का हार्डनेस का कोई सोचते हैं अपने जहन में, तो क्या चीज जहन में आती, कोई हार्ड चीज का आपने कोई एग्जाम्पल देनी हो तो आप किसकी एग्जाम्पल देते, पत्थर की, चट्टान की, हम कहते हैं चट्टानों की तरह, लेकिन फरमाया उन रॉक्स के अंदर भी देखो कि कितनी ऐसी हैं कि जिन जो जो ऐसे फूट पड़ती, फजर है ना बड़े पैमाने पे फूट पड़ना, उनमें से भी नहरें निकल आती हैं, वो भी ऐसी हैं कि जो फट पड़ती हैं जिसमें से पानी निकल आता है, वो भी ऐसी हैं जो गिर जाती हैं अल्लाह के खौफ से। तुम ना तो अल्लाह की आयतें सुन के पढ़ के फट पड़ते हो कि तुम्हारी आंखों के चश्मे जारी हो जाए, ना तुम ऐसे हो कि तुम्हारे आंखों में से कोई एक आंसू का कतरा निकला है, ना तुम ऐसे हो कि तुम गिर पड़ो आजी में कि सजदे में चले जाओ। तुम आजिज कर लो, अपने आप को झुका लो अल्लाह के आगे। इतने सख्त दिल कि इंसान का दिल जब सख्त होता है ना, तो वो कहते हम ना मुहावरे में बोलते, हम मुहावरा नहीं, हम एक लफ्ज बोलते हैं ना, हम कहते हैं बड़ा संग दिल है। कहते हैं ना संग, संग क्या चीज होती है पता है आपको? पत्थर। या हम कहते हैं, वैसे भी कह देते हैं पत्थर दिल है। पत्थर को ना बेइज्जत करो इन दिलों के साथ कह के, क्योंकि अल्लाह ने तो बता दिया पत्थर भी अच्छे हैं, कई पत्थर भी अच्छे हैं दिलों से। ये दिल इतने सख्त हैं। कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की क्लासेस होती हैं, कुरान सीखा जाता है, उसके बाद भी सख्ती है, उसके बाद भी दिल नरम नहीं होता, उसके बाद भी दिल में नेकी का शौक नहीं पैदा होता, उसके बाद भी अगर परवाह नहीं रहती अल्लाह के हुक्मों की, टूट रहे हैं तो टूटते रहे, हमें क्या इससे? तो वो तो फिर पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए, क्योंकि पत्थरों में भी एक हिस है, पत्थर भी कुछ समझते हैं, पत्थर में भी खुदा का खौफ है, वो भी कुछ रिएक्ट करता है। तुम में तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि देखिए जो जैसे एक नरम जमीन होती है ना, नरम जमीन जब होती है तो बारिश पड़ती तो क्या होता है, सब्जा उगता है उसमें से, उसके अंदर आप देखते हैं कि फूल उगते हैं, फसलें उगती हैं, लेकिन वो सारा कुछ एक तरफ होता रहे, दूसरी तरफ आप देखें एक बारिश बरस रही है एक चट्टान पे, उसके ऊपर बरसती रहे चाहे 100 साल बरसती रहे, वो तो वैसी की वैसी रहती है, उसके अंदर नहीं कोई असर होता। लेकिन अल्लाह ताला ने बताया कि लेकिन कुछ चट्टाने ऐसी हैं वो फिर भी फट जाती हैं, लेकिन कुछ दिल ऐसे हैं वो फिर भी नहीं फटते, यानी इतने हार्ड हो चुके हैं। जो चीज हार्ड हो जाती है ना, आप देखिए उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, आप उसको मारें, आप उसको फेंकें, आप उसको कुछ भी करें, आप उसको कितनी भी उसके ऊपर पानी बहाएं, क्या कुछ, वो हार्ड है, उसमें कुछ जाना ही नहीं। तो कुछ दिल भी इतने हार्ड हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं जाता। ऐसे दिलों का क्या हाल होता है फिर, कि ना उनको नेकी को कोई चीज का कोई शौक होता है, ना उनको लोगों के ऊपर कोई रहम आता है, किसी की मुसीबत देख के उनको नहीं कोई परवाह के कोई मर रहा है जी रहा है, हमें से क्या, हमें बस अपना अपना आप सही रखना है बस। उनको अल्लाह के अहकामात की कोई परवाह नहीं होती, नेकियां उनको बोझ लगती हैं, गुनाहों को करने में उनको कोई शर्म नहीं आती, बेहिस हो जाते हैं, बेहिस, ना इंसानियत के लिए उनके अंदर कोई खैर होती है, ना अल्लाह ताला के अहकाम के लिए उनके दिल में कोई जगह होती है। ये दिल हार्ड है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बदबख्ती की अलामात बताई कि बड़ी, हम कहते हैं ना बदबख्ती है, हाय बेचारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको बताए ये बदबख्ती नहीं है, बदबख्ती की जो अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, फरमाया कि बदबख्ती की 4 अलामतें हैं, 4 अलामतों में एक अलामत क्या है, जमूदुल आईन, आंख का जमूद, यानी आंख बहे नहीं, आंख जामिद हो जाए, आंख से आंसू नहीं बहते, तो इसका मतलब समझ लो दिल बदबख्ती है। और नंबर 2 दिल का सख्त हो जाना, नंबर 3 लंबी उम्मीदें, नंबर 4 दुनिया की मोहब्बत, ये बदबख्ती की अलामतें हैं। तो इंसान का दिल भी इतना ज्यादा, अगर जो जो वैसे अल्लाह ने नरम बनाया है, लेकिन अगर वो गुनाहों की वजह से या तावीलें करने की वजह से या अल्लाह ताला के अहकामात को सुन सुन के भी उसके बाद जब इंसान अमल नहीं करता तो दिल सख्त हो जाता है, इसकी वजह से सख्त हो जाता है, तो उसकी उसको एक इबरत दिखाई गई कि देखो तुम तो पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। क्योंकि अच्छा, पत्थरों की मिसाल से दिलों का भी एक मुआजना किया है यहाँ पे, किया कि पत्थर बाज बाज ऐसे पत्थरों की तरह बाज दिल भी होते, बाज जैसे पहली हम एग्जाम्पल लें तो बाज पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें से नहरें फूट पड़ी, यानी बाज दिल भी ऐसे होते हैं, वो लगता है कि बड़े सख्त हैं, लेकिन वो जैसे उनके अंदर कोई चीज होती है, जब वो फटते हैं ना तो नहरें बह पड़ती हैं, जब यानी वो फटने को तैयार होते हैं, जब वो फटते हैं तो इतनी खैर निकलती है उनसे, नहर देखे ना कितनी खैर लाती है, नहर जहां जहां जाती है वहां पे लोगों को खैर ही पहुंचाती है। लेकिन ना नहर तो जन्नतों की भी नहरों का जिक्र किया गया, और नहर ऐसी चीज होती है इंसान कोई उससे फायदा नहीं भी ले रहा, उसको देख के भी मजा आता है, अच्छा लगता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं उनकी खैर हर तरफ फैलती है, वो जिधर जाते हैं खैर का सामान होते हैं, जिधर जाते हैं अपनी जात से लोगों को खैर पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह में ऐसा बना दे, वो लगते थे कि ये तो सख्त है, लेकिन वो जब फूटे तो देखो कहां तक उनकी खैर पहुंची। और कई दूसरे हैं उनकी नहरों की तरह तो नहीं है, लेकिन वो शक हो जाते हैं, फट जाते हैं। फटता कब है पत्थर, जब उसको फिर बहुत जोर से कोई चोट लगे तो वो फिर फट जाता है। ठीक है, तो इनकी जिंदगी में भी कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी चीज किसी ने बोल दी है, या कुछ ऐसी आती जो उनको तोड़ देती है। आप देखें हम मुसीबतों को बुरा तो समझते हैं, लेकिन बाज मुसीबतें भी ना इंसान को अल्लाह से करीब कर देती हैं। आपने देखा नहीं कई लोगों के ऊपर कोई ऐसे हादसात आते हैं, मसलन है कि किसी प्यारे की वफात हो जाती है, या कोई उनके साथ बेवफाई करता है, या उनको सब छोड़ के चले जाते हैं, तो तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो है फयखरुजु मिनहुल मा, फिर वो कहते हैं अल्लाह सिर्फ तेरी जात ही है जो अपनी है, बाकी कोई अपना नहीं, अल्लाह सब अपने अपने चले गए रास्ते पे, अल्लाह किसी ने ना मुझे पूछा, एक अल्लाह तू ही है मेरा सहारा, तूने नहीं मुझे छोड़ा सबने छोड़ दिया। तो छोड़ना लोगों का उनके लिए मुसीबत तो थी, तकलीफ तो थी, लेकिन उस तकलीफ ने उनको क्या कर दिया, अल्लाह के करीब कर दिया, उनकी आंखों ने आंसू बहाए, वो अल्लाह से और ज्यादा उनका ताल्लुक मजबूत हो गया। लेकिन ये हादसा ना होता तो वो पत्थर ही थे, उनको परवाह नहीं थी, वो किसी को अल्लाह की बात को कोई नहीं समझते थे कुछ, वो बेपरवाह थे, लेकिन अंदर कहीं खैर थी, वो दुनिया में मगन थे, अपने हंसने खेलने बोलने इसके अंदर थे, लेकिन एकदम अचानक जब उनके ऊपर कोई चीज पड़ी ना तो इसने उनको बड़ा कुछ सिखा दिया। तो बाज दफा हादसे भी मुसीबतें भी इंसान के अंदर जलजला पैदा कर देती हैं, इंसान नया इंसान बन जाता है। तो आप देखते होंगे लोगों के ऊपर, बाज लोग तो हादसात पे भी नहीं कुछ सीखते, बाज लेकिन ऐसे होते हैं कि हादसात उनको जो है ना बहुत अल्लाह के करीब कर देते हैं। कोई मुसीबत ऐसी आती है, मसलन ऐसी मुसीबत आई कि घर में फाके होने लगे, तब अल्लाह याद आ गया, ऐसी मुसीबत कोई आए कि कोई किसी प्यारे की जुदाई हो गई, तो तब अल्लाह याद आ गया, तब फिर वो अल्लाह की तरफ उन्होंने रुख कर लिया, और फिर उसके बाद उसी उसकी तरफ ही अपना रुख रखा। तो ऐसे भी होते हैं, वइन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के आगे झुक जाते हैं, वो वैसे कहीं नहीं झुकते, लेकिन जब अल्लाह ताला के हुक्म उनको पता चलते हैं तो अल्लाह की हैबत उनके अंदर आजी पैदा करती है, जब अल्लाह को पहचानते हैं वो तो उसके बाद वो झुक जाते हैं। वैसे वो किसी के साथ नेकी करने के अंदर बड़े वो थे कि सख्त थे, लेकिन जब अल्लाह की बातें उनके सामने आई तो फिर उन्होंने कहा कि बस अल्लाह की खातिर मैं किसी इंसान के साथ नहीं ये कर रही। वो कोई लोग उनको दुख देते हैं, कोई लोग उनको परेशान करते हैं, उनका नहीं दिल करता उनके साथ कोई खैर करने का, लेकिन फिर उन क्या चीज उनको झुका देती है, अल्लाह ताला का डर, अल्लाह के डर की वजह से वो गिर पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे भी पत्थर हैं, लेकिन जो कोई इन तीनों में से ही नहीं है वो तो फिर अशद्द कसवा है। फिर अशद्द कसवा यहां पे जो कहा गया ना, ये पत्थरों से भी ज्यादा सख्त दिल के लिए कहा गया, ये उनकी सख्ती तो फिर पत्थरों से भी ज्यादा आगे निकल गई। अब हम देखें कि हमारा दिल इनमें कौन सा है, या हम पहली वाली हालत के हैं, दूसरी वाली हालत के, तीसरी वाली हालत के, नहीं, या इनमें कहीं पे भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि तीन मौके पे अपने दिल को जायजा लो, ये तुम्हारा दिल लगता है कि नहीं, एक जिक्र की मजलिस में दिल लगता है नहीं, एक कुरान पढ़ते हुए दिल लगता है नहीं, एक तन्हाई के औकात में तुम्हें अल्लाह याद आता है कि नहीं। तो अगर यहां पे कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा तो फिर दिल मांगना चाहिए अल्लाह से, क्योंकि देखें हम ना ये नहीं है कि हमें कोई बात समझ नहीं आती, अकल में तो सारी बातें आ रही होती हैं। मसलन किसको नहीं पता कि झूठ बोलना बुरा है, सब कहते हैं, फिर भी क्यों झूठ बोलते हैं? जब दिल कह रहा है कि नहीं, यहां पे नहीं सच चलेगा, यहां पे तो तू तो झूठ ही बोल, तेरी इज्जत रहेगी। जब हम कहते हैं ना कि हाँ बात तो समझ आ गई है मुझे सारी, लेकिन दिल नहीं मानता, तो प्रॉब्लम ना दिल में होती है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब बात समझ आ गई है, हुक्म भी अल्लाह का है, सब कुछ है, वो दिमाग कह रहा है कि हाँ ठीक है, बात लॉजिकल है, आयतें भी पढ़ ली हैं, हदीस भी सामने आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? दिल की तो प्रॉब्लम होती है, दिमाग की नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि समझ नहीं आई भी, समझ आ जाती है, दिमाग समझ के लिए है, लेकिन दिल है जो रुकावटें डालता है। जब तक दिल नहीं मानता तब तक इंसान काम नहीं कर पाता। तो असल चीज तो फिर दिल पे वर्क करने की है ना, ये इसको खालिस किया जाए, इसको प्योर किया जाए, इस पे वर्क किया जाए सबसे ज्यादा। क्योंकि फिर जो दिल ना, देखें अब ना हादसों से मानता है ना, जो दिल उसके ऊपर अल्लाह की आयात का कोई असर होता है ना, को जो मोजजात देख के उसको कुछ समझ आती है, ये भी तो मोजजा है, कुरान मोजजा है। जैसे उनके लिए गाय के टुकड़े से वो आदमी जिंदा हुआ था, इस कुरान से भी वो भी मोजजा था ना, मोजजा था ना एक, ये कुरान भी मोजजा है, इससे भी दिल जिंदा होते हैं। लेकिन अगर किसी का दिल इससे भी जिंदा नहीं होता तो क्या उसका हाल हो गया फिर, किस जगह तक वो पहुंच गया फिर? तो असल चीज क्या है, अपने दिल पे नजर रखने की जरूरत है। ये दिल मेरा कहाँ है, क्या है, मेरे दिल की हालत के क्या, मेरा दिल हार्ड तो नहीं हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके तरीके फिर बताए हैं कि दिल अगर किस सख्ती की पे क्या किया जाए, तौबा इस्तगफार बहुत की जाए, अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा किया जाए, कुरान बहुत पढ़ा जाए, नेकों की मजलिस में बैठा जाए, यतीम के सर पे हाथ रखा जाए। यतीम को डोनेशन दे देने से दिल नहीं नरम हो जाता, यतीम के सर पे हाथ रखने का कहा गया। सुबहान अल्लाह, कितनी हिकमत है ना अहादीस में भी, यतीम के सर पे हाथ रखो। हाँ, यतीम के सर पे हाथ रखना वो ही कर सकता है जो यतीम से इन कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट करता है उससे, उसका हाल अहवाल पूछेगा तो उसके सर पे हाथ रखेगा। दूसरे आप किसके सर पे हाथ रखते हैं? जिससे मोहब्बत करते हैं आप, उससे मोहब्बत करो। हाँ, आप उससे मोहब्बत करें कभी पैसों से ज्यादा, उसको आपकी मोहब्बत और आपकी तरफ से एक तवज्जो की जरूरत होती है, ये बात है। और मुसीबत ज्यादा, बीमार, जो दुखी हैं उनको विजिट करें, उनके पास बैठें, उससे भी दिल नरम होता है। दिल की सख्ती तो बड़ी बदबख्ती है, बहुत सख्त बदबख्ती, बड़ी बदकिस्मती है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये देखें, ये इसमें एक रेमेडी भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के जिक्र के सिवा ज्यादा बातें ना किया करो। कि कलाम की कसरत, बहुत ज्यादा बोलना ना, ये दिल को सख्त कर देता है, और सख्त दिल वाला अल्लाह से दूर होता है। यानी या तो अल्लाह का जिक्र करो, वरना अल्लाह के जिक्र के सिवा बहुत ज्यादा बातें ना करो, क्योंकि वो जो बातें करना है वो दिल को सख्त कर देगा। और अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा दूर कौन है? सख्त दिल वाला। अस्तगफिरुल्लाह। एक और हदीस में आता है, बहुत ज्यादा हंसा ना करो, क्योंकि हंसना भी दिल को मुर्दा कर देता है, मुर्दा हो जाता है दिल। अल्लाहु अकबर। तो क्या हमें इसके इलाज क्या मिला? तौबा, कुरान। अब देखिए कुरान से तो सुभान अल्लाह, सूरह हशर में जो आता है, लहू अनजलना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिय मुतसद्दिअ मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान तो हम किसी पहाड़ पे भी उतार देते ना, तो वो भी अल्लाह के खौफ से गिर जाता, टूट फूट जाता वो, अल्लाह के डर की वजह से। तो अगर ये कुरान सुन के भी ना हमारे दिलों को असर नहीं होता ना, तो समझ लें कि फिर बुरा हाल हो चुका। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम यानी लिल्लदीना आमनु अंतक्षा कुलूबुहुम लिदिक्रिल्ला, अभी तक क्या वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं? वमा नजला मिनल हक, ये सूरह हदीद में है, और जो अल्लाह ने हक उतारा है, वला यकूनु कल्लदीना उतुल किताब, उनकी तरह ना हो जाना जिनको किताब दी गई, मिन कबल, पहले तुमसे पहले उनके पर किस किताब आई थी, फतौला अलैहिमुल अमदु, उनके ऊपर जब मुद्दत लंबी गुजर गई, फकसत कुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए। उनके पास अल्लाह का कलाम आया था, लेकिन पढ़ते रहे उसको, उसके बाद उनका क्या हाल हुआ? दिल ही उनके सख्त हो गए। और कसीरों मिनहुम फासिकून, उनमें से अक्सर फासिक हैं। मैंने बताया कि इनकी तरह ना हो जाना, इनके तो दिल सख्त हो गए थे। तुम अपने दिलों की सख्ती से बचना, उन कामों से बचना जिनसे दिल सख्त हो जाते हैं। हार्ड दिल ना बेहिस दिल है। फिर जरा हार्ड दिल होगा तो कुरान जितना मर्जी पढ़ते रहो, कोर्स पे कोर्स करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर वो दिल के अंदर जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा ना, वो हार्ड एज अ रॉक है, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो फिर पहले इसको नरम करो। इसीलिए जब नसीहत भी आप करें ना, उसका दिल पहले नरम किया करें। ऐसे ही उस किसी के ऊपर बात करते जाएं, उसका दिल अगर सख्त हुआ हुआ है तो उसको क्या आपकी नसीहत का असर होगा। तो सोचें, ये बात को सोचने की जरूरत है कि इन पत्थरों पे भी अगर असर हो जाता है, इन पत्थरों में भी इतनी हिस्स है कि ये अपना अल्लाह को पहचानते हैं। ये ना समझे कि पत्थर को समझ नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मैं अभी तक उस पत्थर को जानता हूं जो मुझे, जो मक्का में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करता था। इन पत्थरों की भी तस्बीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाई थी। तो हिजरे अस्वद देखें, गवाही देगा कयामत के दिन, तो ये इन पत्थरों में भी हिस्सा है, ये भी अल्लाह को पहचानते हैं। लेकिन क्या मेरा दिल इनसे भी ज्यादा गया गुजरा हो गया? ये इनके अंदर भी कोई चेंज आती है कि मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आनी? अगर दिल बदलता ही नहीं है, अगर जिंदगियां बदलती नहीं है कुरान सुन के, समझ जाए कि दिल सख्त हुआ हुआ है, कुछ और वजह नहीं है, कहीं गफलतें हैं, तो तुम गाफिल हो जाओ। लेकिन अल्लाह फरमाता है, वमल्लाहु बिगाफिल अम्मा तअमलून, अल्लाह नहीं है गाफिल जो तुम अमल करते। अल्लाह को सब पता है, अपने दिलों का जायजा लो। अल्लाह को सब पता है जो दिलों के अंदर भी है। इसके बाद तो अमल की फिक्र लग जानी चाहिए कि अल्लाह गाफिल नहीं है मेरे अमल से। अल्लाह अकबर। तो उनकी तो बात हो गई, लेकिन अपने ऊपर जरूर हमें सबको वर्क करने की जरूरत है कि कैसे हमारे दिल नरम हो सकते हैं, क्या हम करें इन दिलों की नरमी के लिए। दिल जितना नरम होगा ना, उतना अल्लाह की बात को जल्दी अब्जॉर्ब करेगा, उतना झुक जाएगा, उतना आंखों से आंसू भी बहेंगे और बदलेगी जिंदगी। और जितना सख्त होगा, फिर टस से मस नहीं होना इसमें, चाहे सो पूरा कुरान आप खत्म कर लें, फिर बस रटने ही है, फिर रट 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 के आगे चलते जाएंगे और कोई चेंज नहीं आएगा फिर। ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون